पैराग्राफ चेंज। डॉक्टर ब्रजेश्वर वर्मा ने सरावली को सुर सागर का सारांश मानते हुए उनके कथानकों का मिलान किया है और निर्णय दिया है कि सरावली सुर की प्रामाणिक रचना नहीं है। वास्तविकता यह है कि सरावली सुर सागर का सारांश है ही नहीं, अतः उसे सुर सागर का सारांश मानकर तथा कथानक की तुलना के आधार पर कोई निर्णय देना बालुका राशि पर गृह निर्माण है। उन्होंने सरावली में नाम छाप के आधार पर भी उसे अप्रमाणित ठहराया है, पर उनका यह गणना भी सदोष है। भाषा के आधार पर भी सरावली को अप्रमाणित नहीं कहा जा सकता, अतः सरावली सूरदास की प्रमाणित रचना सिद्ध होती है, जिसका उद्देश्य ही हरिलीला का गान और उनमें लीन होकर उनका अंग बन जाना। अतः यह अन्य किसी सूरदास की रचना नहीं बल्कि अष्टछापी महाकवि सूरदास की रचना है। रस की दृष्टि से विचार करने पर यह कहना पड़ता है कि सरावली में रस वैविध्य नहीं है, केवल हिरण्यकश्यपु वध वर्णन के अवसर पर रौद्र रस का परिपाक हुआ है। उसी अवसर पर जुगुप्सात्मक वर्णन भी है, पर विभत्स रस का परिपाक नहीं हो पाया है। रसात्मक अनुशीलन में सरावली में विशदता श्रृंगार वर्णन को ही मिली है। उसके संयोग और विप्रलंब दोनों पक्षों का विस्तृत चित्रण हुआ है। अनेक वैतालिक तथा श्रृंगारिक लीलाओं का भी विस्तार किया गया है, किंतु यह समझ लेना चाहिए कि वह लौकिक श्रृंगार नहीं है। इसमें रागानुगा भक्ति का परिपाक है और इसका उद्देश्य है तत्सुखी भाव से राधा कृष्ण की लीला में निमज्जन, जो लीला होली किरणा के रूप में अनिरत रूप से चल रही है। सरावली का दार्शनिक आधार शुद्धाद्वैतवाद है और इसमें पुष्टि मार्गी सिद्धांतों का निरूपण किया गया है। इसमें श्री कृष्ण सच्चिदानंद परब्रह्म है, वे लोक रक्षक तथा लोक रंजक दोनों है। वे राम के समान मर्यादा पुरुषोत्तम ही नहीं है बल्कि लीला पुरुषोत्तम तथा रस रूप भी हैं। वे लोक वेद मर्यादित भी हैं तथा लोक वेदादित भी। वे परस्पर विरोधी धर्मों के आश्रय है। वे शिशु भी हैं, रसिक भी, पूर्ण काम भी और कामातुक भी। श्री कृष्ण अनंत शक्ति के आश्रय हैं। अपनी लीला प्रकट करने के लिए सृष्टि का आविर्भाव करते हैं। उनकी वृंदावन लीला शाश्वत है, गोकुल भी नित्य है, वही ब्रज में अवतरित हुआ है। जगत ब्रह्म का भौतिक स्वरूप है। इसका निर्माण ब्रह्म के सत अंश से 28 तत्वों से हुआ है। वह उसका निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी। इस कारण भी जगत भी सत्य है। पृष्ठ संख्या 85। पुष्टि मार्ग में जगत और संसार में अंतर है। प्रथम ब्रह्म कृत्य है और द्वितीय जीव कृत्य। संसार अविद्या परक होने से मिथ्या है। ज्ञान अथवा भक्ति से जीव संसार से मुक्त हो जाता है, पर जगत बना रहता है और प्रलय काल में ही ब्रह्म में तिरोहित होता है। पैराग्राफ चेंज। जीव ब्रह्म का अंश है, अतः वह भी सत्य है। जीव की तीन कोटियां हैं, शुद्ध, संसारी और मुक्त। वल्लभाचार्य ने जीवों के पहले दो भेद किए हैं, देवी और आसुरु। दैवी जीवों के दो भेद हैं, पुष्ट जीव, मर्यादा जीव। पुष्टि जीव के पुनः चार भेद हैं, शुद्ध पुष्ट, पुष्टि पुष्ट, मर्यादा पुष्ट तथा प्रवाह पुष्ट। माया ब्रह्म की शक्ति है, अतः वह सत्य है। इसके दो भेद हैं, विद्या और अविद्या। इन्हें को क्रमशः करण और व्यामोहिका कहते हैं। करण से ही सृष्टि की रचना हुई है, व्यामोहिका से जगत आच्छादित हो जाता है। पुष्टि मार्गी उससे बच जाता है। मुरली माया का प्रतीक है, वह भक्त को भगवान की ओर आकृष्ट करती है। पैराग्राफ चेंज। सरावली में प्रेम लक्षणा भक्ति को लेकर एक दशधा भक्ति का विधान किया गया है। सरावली में पुष्टि मार्गी सेवा पद्धतियों, गुरु सेवा, प्रभु सेवा तथा संत सेवा का विधान किया गया है। इसमें 8 से लेकर 4 नैतिक सेवाओं जैसे मंगला, श्रृंगार, राजभोग और शयन तथा जयंतियों, पर्वों तथा ऋतु संबंधी उत्सवों के रूप में वार्षिक सेवा का वर्णन मिलता है। वस्तुतः यह पुष्टि मार्ग का आधार प्रतिपादक ग्रंथ है, इसी कारण इसमें काव्यत्व की मात्रा न्यून है। पूर्व में ही कहा जा चुका है कि भाषा के संदर्भ में सूरदास ने ब्रज भाषा को शुद्ध और परिष्कृत रूप से निखारा है। उसमें श्रुति मधुरता और अभिव्यंजना शक्ति भरी हुई है। शरावली की भाषा तद्भव प्रधान है, इसमें लगभग 40% शब्द तत्सम है, शेष तद्भव। विदेशी शब्द अत्यंत अल्प में मिलते हैं। पृष्ठ संख्या 86, इसमें लक्षणा का प्रभुत प्रयोग हुआ है पर व्यंजना का अपेक्षाकृत कम। मुहावरों और लोकोक्तियों का यथा अवसर प्रयोग हुआ है। तत्सम शब्दों का उचित अनुपात में प्रयोग करके सूर ने ब्रज भाषा की अभिव्यंजना शक्ति बढ़ा दी है और उसकी स्वाभाविकता और मधुरता को भी आँच नहीं आने दी। सूरदास ने ब्रज भाषा को एक निश्चित स्वरूप का अवसर प्रदान किया है, पर उन्होंने शब्दों का रूप विकृत करने में कम स्वतंत्रता नहीं बरती है। गए हैं ब्रैकेट में गए हैं, भय है ब्रैकेट में भय है, विवाह ब्रैकेट में विवाही, ऐसे ही प्रयोग हैं। उन्होंने लिंग तथा वाच्य संबंधी अशुद्धियां भी की है। कहीं कहीं नून्य पदत्व दोष का भी वर्णन मिल जाता है। विवशता न रहने पर भी उन्होंने भिन्नार्थी क्रियाओं का सामासिक प्रयोग किया है, जैसे करो भूतकालीन कृदंत, एक वचन पुलिंग, अन्य पुरुष इस्य भी है तथा आज्ञार्थक बहुवचन इस्य भी। उन्होंने कुछ सार्वनामिक विशेषणों तथा भूतकालीन कृदंतों के अवधिशयों का भी प्रयोग कर दिया है। सामान्यतः शरावली की भाषा में लंबे लंबे समास नहीं है, किंतु दृष्टिकूटक छंदों के पांच पांच शब्दों के भी समास मिल जाते हैं। उन्होंने कुछ समासों को उलट भी दिया है, जैसे कुमुद बंधु का बंधु कुमुद। संभव है ऐसे प्रयोगों पर फारसी का प्रभाव हो। सूरदास ने दृष्टिकूटकों की रचना में बड़ी रुचि ली है। सुरसागर में उन्होंने सैकड़ों दृष्टिकूटों की रचना की है। शरावली में भी राधा मान के प्रसंग में उन्होंने 30 दृष्टिकूटकों का छंद लिखा है। साहित्य लहरी में तो दो एक को छोड़कर सभी दृष्टिकूटक है। शरावली में इनकी रचना में इन्होंने 11 पद्धतियों का अवलंबन किया है, जिनका इसमें विश्लेषण किया गया है। शरावली की मंगलाचरण पद में है, उसके पश्चात एक पंक्ति का टेक है, उसके पश्चात सारी रचना सार और सरसी छंदों में हुई है। ग्रंथ का सार छंद में ही होता है। लय से पढ़ने या गाने में पदांतों के दीर्घ हो जाने पर सरसी भी सार बन जाता है। शरावली की रचना अलंकार प्रियता की दृष्टि से नहीं हुई है, इसलिए शरावली में सजगता पूर्वक अलंकारों का चमत्कार नहीं दिखाई देता। फिर भी दृष्टिकुटकों में प्रयुक्त यमक को छोड़कर शेष अलंकार स्वाभाविक रूप से आ गए हैं। शब्द अलंकारों में अनुप्रास और यमक का प्रयोग हुआ है, परंतु अधिकतर अर्थालंकार सादृश्य मूलक है। उसमें उपमा, ललित उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, रूपकातिशयोक्ति, उदाहरण, उल्लेख, स्मरण तथा स्वभावोक्ति अलंकारों का भी प्रयोग हुआ है।